समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी है आज पूर्णतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, एंड टू ऑल आवर लिसनर्स, वेल अ हार्टफेल्ट हेलो एंड अ गुड डे एवरीबॉडी। वेल, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन एंड करिश्मा, एंड अगेन Today we'll give you a selection of news first, then our discussion segment Dateline India, very important topic which we will be discussing at length. Also, so many reports, capsules and tributes which are at the end of the program. So make sure that you are tuned in for the next half an hour roughly. First we'll begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is rapidly advancing in breakthrough technologies in space sector.
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता अभी जारी है। उन्होंने कहा सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध।
क्लाउड बर्स्ट कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज इन थराली ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर ईस्ट राजस्थान टुडे।
भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम के कनाडा में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में पहली बार जूनियर विश्व खिताब जीता।
And Indian Air Rifle Mixed Team of Arjun Babuta and Elvanil Valarivan bagged gold medal at Asian Shooting Championship. Well, today in our segment Dateline India, we will talk about National Space Day, right? And well, before beginning with that, let's wish our listeners Jai Hind. Today we are celebrating not just the stars above us, but the minds among us who make the impossible possible. Today it's a historic day, one that fills every Indian heart with pride. Well, it's National Space Day. Today, the 23rd of August, marks the second anniversary of one of the most remarkable achievements in India's space history, the successful soft landing of the Chandrayaan 3 mission's Vikram lander on the surface of the moon. Well, it brings to me, personally, if I talk about my experience, I was watching news channels that day and everybody was celebrating, each and every person.
मैं खुद उस समय टीवी के स्क्रीन से चिपकी हुई बैठी थी कि एक एक क्षण जो होता है वो इतना भारी हो रहा था कि क्या होने वाला है.
Yes, so this feels really special because it brings back so many memories of this remarkable achievement and with it, the glorious debut of our मून रोवर प्रज्ञान।
और आइए कमर कस लें और अब आपको भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के सफर पर ले चलें। आइए 23 अगस्त 2023 में वापस चलते हैं। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक लाखों आंखें अपनी स्क्रीन पे चिपकी हुई थी, दिल धड़क रहे थे और फिर जैसे ही चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर उतरा, सन्नाटा जश्न में बदल गया।
Truly, and with that one landing, India became the first country in the world to land in this particular challenging region of the moon, and only the fourth ever to successfully land on the moon at all. A historic moment. Well, not just for our nation, but also for all of the humanity. And then came Pragyan, the six-wheeled lunar rover rolling out to explore the moon, conduct scientific experiments, and transmit valuable data back to Earth.
On this day in 2023, the Chandrayaan 3 mission accomplished the safe and soft landing of the Vikram lander on the lunar surface. With this, India became the fourth country to land on the moon and the first to land near the southern polar region of the moon. The soft landing was followed by a successful deployment of the Pragyan rover. The landing site was named Shiva Shakti Point. To honor this achievement, the Government of India officially declared August 23rd as National Space Day. The day recognizes highlighted significant achievements in space exploration and highlights advancements in space technology. The theme for this year's celebration is Aryabhatta to Gaganyaan, Ancient Wisdom to Infinite Possibilities. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
और इसे और भी खास क्या बनाता है, यह वैश्विक समकक्षों की तुलना में बजट अनुकूल मिशन था, फिर भी विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग सटीकता और महत्वाकांक्षा से भरपूर था। यह उपलब्धि अब हमारी राष्ट्रीय स्मृति में अंकित हो गई है और हर 23 अगस्त को हम इसे गर्व के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में याद करते हैं।
Wow, and just think about it. Well, a decade ago, India's space sector was limited, and today it is a revolution. And today, to mark this special occasion, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation with a message of inspiration and vision. He extended his heartfelt greetings to scientists, researchers, engineers, and the youth of India, the true fuel behind, well, India's rising rocket.
इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है।
He shared that India is moving rapidly ahead in cutting-edge technologies, including semi-cryogenic engines. Well, these promise more powerful and efficient launches. Second, electric propulsion systems, the future of eco-friendly long-duration space travel. And most excitingly, the upcoming Gaganyaan mission where India will send humans into space. Yes, dear listeners, we are entering an age where Indian astronauts will orbit the Earth in indigenous spacecraft. But that's not all.
बिल्कुल, इसके साथ ही श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात भी कही जिसने हर अंतरिक्ष प्रेमी के दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया कि भारत आने वाले वर्षों में अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी भारतीय उपस्थिति, पृथ्वी से ऊपर हमारा झंडा लहराता हुआ, वैश्विक अनुसंधान, नवाचार और अन्वेषण में योगदान देता हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी मदद करता है? कैसे करता है, इसे भी समझेंगे।
जी करिश्मा, द प्राइम मिनिस्टर आंसर दैट टू। He said that space technology is not just about rockets or planets. It's becoming a vital part of our governance and daily life. So, here's how. Let's explore that. Farmers, they are getting satellite-based crop assessments for better insurance and planning. Talking about fishermen, they are receiving safety alerts and weather updates via satellite, helping save so many lives at sea and also in disaster-prone areas. The third point that I would like to focus on, well, ISRO's data is being used there for early warning systems and rescue coordination. Major infrastructure projects now, like PM Gati Shakti, they are using geospatial mapping from space to build roads, railways and logistics systems with incredible accuracy. So many benefits and advantages.
बिल्कुल, और ये सही है कि अंतरिक्ष क्षेत्र जमीनी स्तर पे वास्तविक प्रभाव डाल रहा है। किसान के खेत से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक अंतरिक्ष तकनीक हमारी प्रणालियों को और अधिक स्मार्ट और तेज बनाने के लिए पृष्ठभूमि में चुपचाप से काम कर रही है। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष क्रांति नहीं है, यह एक स्मार्ट इंडिया क्रांति है।
Well, right, Karishma. And in the last 11 years, India has opened new frontiers in space by introducing progressive reforms. Well, once a government-dominated domain, the space sector, it is now seeing the rise of startups, also private companies and international partnerships. Well, startups like, let me name them, Skyroot Aerospace, Agnikul Cosmos, and there are others as well. They are building their own rockets. How wonderful. Students from colleges across India, they are launching nano satellites and then winning global innovation awards. And organizations such as InSpace and NSIL, they are working to ensure the private sector and academia, they can participate fully in India's space economy. How great is that?
बिल्कुल और इसी के साथ वहां मौजूद युवाओं के लिए ये आपका पल है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल अतीत पर नजर डालने के बारे में नहीं है बल्कि वैज्ञानिकों, विचारकों और स्वप्नदर्शियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में भी है क्योंकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य अब आपके हाथों में है.
एंड राइटली सेड करिश्मा. वेल, वेदर यू आर अ स्टूडेंट sketching rocket blueprints in your notebook, and we can imagine that, right? A coder building space simulation games, or a casual stargazer wondering what lies beyond Mars. Well, remember this. You are part of India's cosmic story.
इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के किसी भी अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के बराबर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन जैसे एक के बाद एक मिशन निर्धारित है. डॉक्टर नारायणन ने कहा कि भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और इसका पहला मॉड्यूल 2028 तक प्रक्षेप हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एनजीएल नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चर को मंजूरी दे दी है.
When it comes to honorable prime minister of our country, he is a different person with great tangential thinking. The vision direction given by him, based on his vision, we are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to have a Venus orbiter mission. We are going to have a space station called VAS. By 2035, India will have a space station on its own. And the first module will be lifted off by 2028. And he has given approval for a NGLV, next generation launcher. And next generation...
And each one of us, we are aware with Group Captain Shubhanshu Shukla's remarkable feat. Well, he said India has some very big ambitions going forward with the Gaganyaan mission, the Bharatiya Antariksh Station, and eventually landing on the moon. He said the Japanese and European space agencies, they're also excited about this particular mission. Mr. Shukla said this is the golden period for the country as far as space exploration is concerned.
I think the excitement is very real. We have great ambitions, and I think now, since the responsibility has been given, it is our job and duty to perform them. I'm so happy to see that is already happening in a lot of ways. I think this is the golden period for our country as far as space exploration is concerned.
Well, yes, the road ahead to infinity and beyond, well, missions to Venus and Mars, the Gaganyaan human space flight, the Indian space station, growth in satellite launches, Earth observation, space-based internet, and even space tourism. Well, someday, India's journey is not only just beginning, and we are building it, not just for exploration, but for education, for development, and also for self-reliance.
और इसके साथ ही श्रोताओं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब एक रॉकेट ऊपर उठता है तो अरबों सपने भी उसके साथ उड़ते हैं. इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हम इसरो के अपने वैज्ञानिकों, भूतपूर्व और वर्तमान को सलाम करते हैं. डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे दिग्गजों से लेकर आज मिशन नियंत्रण में कार्यरत युवा तक को, जो भारत को पहले से कहीं अधिक आगे ले जाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं. हम हर उस भारतीय के जज्बे को सलाम करते हैं जो बड़े सपने देखने का साहस रखता है.
एंड दिस एक्चुअली स्टार्टेड यू नो इन द एंशिएंट टाइम्स एज वेल. देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी अदर साइंटिस्ट एज वेल. In those times, they have already captured and they have already found out those facts which we are exploring them now. Mm. Also, listeners, well, wherever you are, to look up at the sky tonight and remember that we are not just watching the stars anymore. We are reaching for them. Finally, wishing you a proud and inspiring National Space Day. And always remember, space isn't far away. It's just the next step.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
बिहार में इको टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटकों के लिए कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नदियों और झीलों में जहां स्पोर्ट्स गेम्स वाटर एडवेंचर्स की शुरुआत की जा रही है, तो वहीं पहली बार पर्यटकों के लिए प्रख्यात दुर्गावती जलाशय के करमचट डैम में पहली बार हाउस बोट सुविधा शुरू होगी। कल इसकी शुरुआत होगी और आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।
बिहार में पहली बार पर्यटकों के लिए हाउस बोट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय स्थित करमचट डैम में यह सुविधा उपलब्ध होगी। दुर्गावती जलाशय का क्षेत्र पर्यटकों के लिए काफी बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक झरने और जलप्रपात लोगों का मन मोह लेते हैं। राज्य के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार कल इसका उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर कुमार ने कहा कि यह सुविधा कश्मीर के डल झील की तरह होगी। करमचट डैम पहले से ही प्राकृतिक सुंदरता और अपनी हरियाली के लिए चर्चित है, लेकिन हाउस बोट सेवा की शुरुआत होने के बाद यह स्थल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। हाउस बोट में पर्यटकों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे न केवल प्रकृति का आनंद उठा सके बल्कि अपने बोट के सफर को आरामदायक और यादगार भी बना सके। हाउस बोट में आने वाले पर्यटकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बोट में एक वातानुकूलित कमरा, एक बाथरूम और किचन की व्यवस्था की गई है। इसमें एक बार में 8 से 10 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह क्षेत्र चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहां आने वाले लोगों को 10 से 12 झरने देखने का आनंद मिलता है। यह नई सुविधा रोजगार के कई अवसर भी सृजित करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर्यटकों के आने की संभावना है। कैमूर जिले का यह इलाका ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध है। हाउस बोट संचालन से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, परिवहन और हस्तशिल्प से जुड़े व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
The Railway Board has approved a joint parcel product rapid cargo train from Delhi to Wadgaon in the Kashmir Valley to benefit the local population and the business class. The Railway Board examined the proposal of the Northern Railway Zone under which the Jammu Division falls and decided to accord approval for the cargo train service on the Budgam, Adarsh Nagar, Delhi, Budgam route on a daily basis. Well, the train will have a seating cum luggage rack with 8 parcel vans and it will reach its destination station in about 23 hours.
Just ahead of its apple season, Kashmir Valley has got its parcel train service as in a major push to J&K's economy and facilitate Manly Valley's horticulturists. The Jammu Division of Northern Railway will operate this train daily and this is the first such service in the Union Territory. This train service will be started soon. The objective of this initiative is to benefit the fruit producers beside other small and big businessmen of Kashmir. The main objective of this cargo service is to benefit the traders of J&K and to deliver Kashmir goods including apple, saffron, dry fruits and walnuts, pashmina shawls, carpets and other handicrafts to every corner of the country and to encourage their marketing internationally. The train service shall operate with 8 parcel vans and 1 seating cum luggage rack. It will have an intermediate loading unloading facility at the Badi Brahmana station in Samba district. The cargo train service would initially be run on a pilot basis for 1 year from the date of the operation. The Northern Railway shall coordinate with the J&K police in matters connected to the security of running this train. Security of the parcels shall be ensured at both the originating and terminating end. Scanning of the parcels shall be ensured in consultation with the state police. Senior Commerce Divisional Manager, Jammu Division, Uchit Singhal said a half-yearly review may also be carried out to assess the effectiveness of the pilot project from time to time. Necessary instructions may be given to the staff concerned and wide publicity may be done among the stakeholders, especially in the Jammu Division. The initiative aims to increase the share of railways in the courier business and provide an effective, reliable reliable and economical option to the customers. This service is focused to benefit the business class and its main objective is to showcase the unique products of Jammu and Kashmir such as dry fruit and handicrafts and to encourage their marketing in India and abroad. This train will reach its destination station Adarsh Nagar Delhi safely in about 23 hours, which is less time than road traffic from Budgam. This will prove to be an economical option compared to road travel as the registration fee has been reduced. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
Yes, we will talk about the achievement. Well, Indian shooters Arjun Babuta and Alvanil Valaruban clinched gold medal in 10-meter air rifle mixed team event at the 16th Asian Shooting Championship in Shymkent, Kazakhstan. Well, the duo defeated Chinese duo by 17-11 in the final to take home this title.
और इसी के साथ 134वें प्रतिष्ठित डूडन कम फुटबॉल का फाइनल मुकाबला आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच कोलकाता में खेला जाएगा. और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे.
The day of 23rd August is important in the history of freedom movement because on this day in the year 1933, Mahatma Gandhi was released from Yerawada jail as his health deteriorated following a fast. In the beginning of August in 1933, Bapu declared his intention to offer individual satyagraha. The colonial government arrested Bapu in Ahmedabad and sent him to Sabarmati prison. Later, he was shifted to Yerawada jail, where he began a fast on August the 16th, because he was not allowed his work for Harijans from inside the jail. However, on August the 20th, he was admitted to a hospital, still a prisoner. By August the 23rd, his condition was serious and he was released unconditionally.
We also bring you the story of a great freedom fighter, Tanguturi Prakasham Panthulu, who is popularly called Andhra Kesari. It was today in 1872 that the famous freedom fighter was born in present-day Prakasham district in Andhra Pradesh. The district was named after him. He's known for his grit and valor against the British. In a famous incident, he stood before the police to shoot at him during the Simon Commission's visit to then Madras in 1928. Prakasham is also well known for his active participation in the non-cooperation movement in 1922. He organized a demonstration by 30,000 Congress volunteers in Guntur. In 1942, when the call for Quit India was given by Mahatma Gandhi during the Bombay session of the Congress, demanding an end to the British rule in India, Prakasham was one of the active participants. He was arrested and jailed for more than 3 years.
During the freedom movement, Prakasham also founded the Swarajya magazine and spread nationalistic sentiments across the country. Tanguturi Prakasham graduated from the Madras Law College. After practicing as a lawyer for 14 years, he went to England and completed the barrister's course to qualify as a lawyer in the Madras High Court. He met Gandhiji for the first time on a ship to London. He was fascinated by Gandhiji's idea for the freedom struggle. He served as State Congress President 4 times before the independence. He also served as the Chief Minister of the State of Madras and Andhra. His administrative abilities were reflected in his important decisions in manifold areas of statecraft. The Zamindari Abolition Report, prepared by him for Madras Province, became the precursor of the Government of India's efforts to abolish the system in the country. On May the 20th, 1957, the country lost one of its greatest sons and freedom fighters. India is forever indebted to the selfless service of these great men who fought for the independence of the country.
और श्रोताओं, इसी के साथ आज हम याद कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत के महान गायक विनायक राव पटवर्धन को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनकी गायकी में रागों की गहराई, आलाप की गंभीरता और सुरों का अद्भुत सौंदर्य मिलता था। विनायक राव पटवर्धन ने केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं गाया, बल्कि भक्ति संगीत और भाव गीतों में भी अपना एक विशेष छाप उन्होंने छोड़ी थी। उनकी प्रस्तुतियां श्रोताओं को आध्यात्मिक अनुभव कराती थी।
Listeners, let me now talk about another musician, a lyricist. Now I am talking about Oscar Hammerstein. Well, in nearly 40 years of career, the musical theatre that he had been doing, and as a lyricist also, he has co-wrote 850 songs, and many of his songs are standard repertoire for vocalists and also jazz musicians. I have chosen this song, Oklahoma, Listen In.
They couldn't pick a better time to start. In life,
it ain't too early and it ain't too late.
Starting as a farmer with a brand new wife,
soon be living in a brand new state.
Brand new state, gonna teach you great.
Gonna give you barley, carrots, and potatoes.
और इसी के साथ श्रोताओं, आज है मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन। उनका फिल्मी सफर 1961 में फिल्म जंगली से शुरू हुआ था और उस फिल्म में शमी कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया था। दर्शकों ने उन्हें खुले दिल से अपनाया था। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जंगली का ये फेमस गाना।
एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों।
सायरा बानो अपनी खूबसूरती, मासूमियत और शानदार अदाकारी के लिए जानी जाती है। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और उनकी प्रमुख फिल्मों में पड़ोसन, शागिर्द, आदमी और इंसान, विक्टोरिया नंबर 203 और अपनी ही दुनिया शामिल है। और खास तौर पे फिल्म पड़ोसन में सुनील दत्त और किशोर कुमार के साथ उनका जो टाइमिंग थी, कॉमिक टाइमिंग थी, वो आज भी दर्शकों को हंसाती है।
पढ़ाई हो रही है क्या?
जी हाँ। आपका पर्चा कैसा हुआ?
ओह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही आसान था। अच्छा देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है।
मुझसे?
आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हैं?
नीचे? आपका मतलब आपके घर में?
नहीं नहीं नहीं, नीचे मेरे दरवाजे पे आएंगे ना?
क्यों नहीं क्यों नहीं, आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं, अभी आ जाऊं।
आइए ना प्लीज।
Well, yes, we are talking about Sayra Banu, and well, some artists, they are so impactful, their voices are enough to tell us how wonderful and talented they are. And she, well, she has been regarded as one of the finest actors of Hindi cinema. She was among the most popular actresses, undoubtedly, of the 1960s and also the early 1970s.
और इसी के साथ सायरा बानो की जो जिंदगी थी वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। 1966 में उन्होंने हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से शादी की और दोनों की जोड़ी ने सिनेमा जगत में प्यार और समर्पण की मिसाल कायम की है। सायरा बानो ने 40 से अधिक फिल्मों में काम किया और आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है।
Now, let me talk about Gene Kelly, the actor and singer, another actor. He was known for his energetic and athletic dancing style. And the song which I have chosen, it's specifically because of this particular monsoon season. Listen in.
Do 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 do
Listeners, well, we have chosen this specific moment to also talk about KK. Well, Krishna Kumar Kunnath, the Indian playback singer. Well, everybody knows him and has heard his songs, right? And regarded as one of the greatest and most prolific playback singers.
बिल्कुल तो मशहूर गायक KK का जन्मदिन है और उनके सुरों से भारतीय संगीत को एक नई पहचान मिली और उन्होंने 1999 में अपने पहले एल्बम पल से गायक के तौर पर शुरुआत की और इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग आज भी हर दिल को छू जाता है
पल ये है प्यार के पल
तो केके की गायकी की खासियत थी कि उनका सहजता और सच्चाई लोगों को काफी पसंद आती थी
एंड लिसनर्स नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू लीव यू विद दिस पर्टिकुलर ट्रैक सो नमस्कार